अत्यंत विद्वान व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और पूछता है, मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो किसी भी शास्त्र में लिखी नहीं गई है, मुझे कोई ऐसी ज्ञान की बात बताओ जो आज तक किसी भी धर्म में नहीं कही गई है, कोई ऐसी बात जिससे ज्ञान का प्रकाश अंदर हो जाए। गुरु कहता है एक काम करो, बाहर जो बारिश हो रही है उस बारिश में जाओ और आसमान की तरफ देखते हुए अपने हाथ फैला दो और खड़े हो जाओ। तो वो व्यक्ति वैसा ही करता है। दूसरे दिन वो आता है, गुरु पूछता है तुम्हारा क्या अनुभव रहा। वो कहता है अनुभव तो ये रहा कि जब मैं वैसा खड़ा रहा तो मुझे लगा कि मैं कितना बेवकूफ हूं, कितना मूर्ख हूं। गुरु ने कहा कि आज के लिए इतनी शिक्षा काफी नहीं है, ये जान लेना कि अब तक मैंने कुछ भी नहीं जाना है, ये जान लेना कि अब तक इस विश्व में कितने ऐसे रहस्य हैं जो मैंने नहीं जाने हैं, जो मुझे समझ में नहीं आए हैं, और ये जान लेना कि मैंने कुछ नहीं जाना है, ये ज्ञान की शुरुआत है। ये जान लेना कि मैं मूर्ख हूं, ये ज्ञान की शुरुआत है। आज की सारी मुरली में कम से कम 10 से 15 बातें हैं जो बाबा ने कही, वो लोग नहीं समझते। बाप क्या है नहीं समझते, रावण क्या है नहीं समझते, रावण को क्यों जलाते नहीं समझते, ओम शांति क्या है नहीं समझते, ओम का अर्थ क्या है नहीं समझते। और तुम समझते हो क्या? वास्तव में हम समझते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम कौन हो? सर्च लाइट हो। तुम क्या करते हो? करते क्या हो? कौन सा पर्दा हटाते हो? अज्ञान का पर्दा हटाते हो। किस रोशनी से? अपनी संपूर्णता की रोशनी से। अज्ञान का पर्दा हटाने वाले तुम सर्च लाइट हो। पर उसके भी पहले ये अनुभव हो कि हमने बहुत कुछ नहीं जाना है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये ज्ञान की शुरुआत है, नहीं तो अहंकार अभिमान रहेगा। कल कहा था जब अभिमान अहंकार सेवा से निकल जाएगा तो वो सेवा क्या बन जाएगी? श्रेष्ठ नहीं, गोल्डन एजेट। गोल्डन एजेट सेवा कब बनेगी? जब अहंकार अभिमान निकल जाएगा, अपमान अभिमान अपमान, और जब जिद सिद निकल जाएगी, ईर्ष्या सब निकल जाएगी, तब गोल्डन एजेट स्वभाव बन जाएगा। और गोल्ड कब बनोगे? जब मोल्ड कर सकोगे, जैसा समय वैसी परिस्थिति, तब रियल गोल्ड बन जाओगे। गोल्डन एजेट स्वभाव, गोल्डन एजेट सेवा, रियल गोल्ड। और आज कहा दुनिया वाले ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, ऐसा नहीं जानते, वैसा नहीं जानते, ये भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। साथ साथ ये भी समझना है बाबा, हम भी नहीं जानते हैं। इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से तीर तो हमारी तरफ ही चल रहा है कि तुम भी कहां जानते हो। जान लेना, समझ लेना, और क्या बन जाना? सच लाइट। बाबा ने कहा तुम धरती के सितारे हो। तुम कौन हो? धरती के सितारे हो। तुम विश्व में हलचल है, वो हलचल को मिटाए तुम संसार को सुखमय बनाते हो, स्वर्णिम संसार सजाते बनाते हो। तुम धरती के सितारे हो, तुम पुरुषोत्तम आत्माएं हो, संसार को सुख शांति की श्वास देते हो। पुरुषोत्तम आत्माएं, धरती के सितारे और सर्च लाइट। तो ऐसा सर्च लाइट बनना है। सर्च लाइट अर्थात, सर्च लाइट कैसा होता है? घूमता है ना, गोल 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 गोल, सर्च लाइट ऐसा घूमता है ना, बड़ा होता है, जो स्टेडियम में होता है या तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, उसमें ऐसे सर्च लाइट घूमता है, या तो मिलिट्री में, या तो नासा जो सर्च करते हैं आसमान में, वहां सर्च लाइट होता है। तो बाबा ने कहा है अंतर्मुखी बन जाओ और क्या करो, गुह्य अनुभव के रत्नों से स्वयं को भरो। जब ये काम करोगे, ज्ञान के रत्नों से, अनुभव के रत्नों से स्वयं को भरोगे, तब बन जाओगे सर्च लाइट। और ऐसे व्यक्ति का जीवन किस लिए होता है? दूसरों के लिए होता है, दूसरों के कल्याण के लिए। वैष्णव जन तो तेने कही है, किसको कही है? वैष्णव, जब पीड़ पराई जाने रे। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। दूसरों के दुख पर जब वह उपकार करे तो अपने मन में कोई अभिमान ना आने दे। 15वीं शताब्दी नरसिंह मेहता गुजराती में लिखा ये गीत, ये भजन। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा ना करे केनी रे। जो सभी का सम्मान करे और किसी की निंदा ना करे, ये ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान अर्थात परसों का वरदान किसमें दिखना चाहिए? कर्म। कर्म ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। जो अपनी वाणी कर्म और मन को निश्चल रखे, उसकी मां अर्थात धरती मां धन्य धन्य है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात्रे। जो सबको समान दृष्टि से देखे, संसारिक तृष्णा से जो मुक्त है, तृष्णा इच्छा उस घड़े के जैसी है, उस मटके के जैसी है जिसमें हजार छेद है, कभी नहीं भरती। इच्छा तृष्णा डिजायर दुष्पूर है, उस मटके की जैसे जिसमें कितने छेद है? हजार छेद। ये वो भिक्षा पात्र है जिसकी कोई तलहटी नहीं है, कभी भरता ही नहीं, निरंतर खाली है। समदृष्टि ने त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात्रे। जो सबको समान दृष्टि से देखे, संसारिक तृष्णा से मुक्त हो, पर स्त्री को अपनी मां की तरह समझे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथेरे। जिसकी जिह्वा असत्य बोलने पर रुक जाए। तुम किसकी संतान हो? सत बाप की संतान हो। ये देह सबसे बड़ा असत है, तुम सत के संग में हो। वो लोग कहते हैं हम भक्ति मार्ग में सत्संग में जाते, पर वो सत्संग है ही नहीं, क्योंकि सत्य बाप तुम्हारे साथ बैठा है। कल की साकार वाणी, तुम सत्संग में हो। कितनी अच्छी वाणी है, सत्संग, सत के संग में। दूसरे के धन को पाने की इच्छा न करे, पर धन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मना मारे। जो मोह माया से व्याप्त ना हो, जिसके मन में दृढ़ वैराग्य हो, आज की साकार मुरली वो है हद के सन्यासी। तुम हो बेहद के, वो तुम हो राज ऋषि। तुम कौन हो? राज ऋषि हो, राजयोगी हो। तुम बेहद के वैरागी हो, उनका तो हद का वैराग्य है, तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। मोह माया जिसे व्याप्ति नहीं। राम नाम शूथाली रे लागी, सकल तीर्थ तेना तन मारे। जो हर क्षण मन में राम नाम का जाप करे, उसके शरीर में सारे तीर्थ विद्यमान है। वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवारया रे। जिसने लोभ कपट काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, भने नरसयो तेनु दर्शन करता कुल एकोतेर तारिया रे। ऐसे वैष्णव के दर्शन मात्र से ही परिवार की कितनी पीढ़ियां तर जाती है? 71 71 पीढ़ियां तर जाती है, उनकी रक्षा हो जाती है। क्यों 71? एकोतेर तारिया रे, भने नरसयो तेने दर्शन करता कुल एकोतेर तारिया रे। वैष्णव कौन होता है, वैष्णव क्या होता है? और बाबा की मुरलियों में आता है सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। सच्चे सच्चे आर्य तुम हो, वो अनार्य है तुम आर्य हो, वैष्णव तुम हो। वैष्णव अर्थात संपूर्ण पवित्रता की जिनमें धारणा है उन्हें वैष्णव कहा जाता है, और सच्चे वैष्णव अर्थात जो दूसरों की पीड़ा को समझे, दूसरों के दर्द को समझे, जिनका आचरण इतना नैतिक है, इतना ऊंचा है, मन अभिमान नहीं आता है, उनके मन में अहंकार नहीं है। तो हमें भी क्या बनना है, ऐसा आध्यात्मिक, अलौकिक, रूहानी, दिव्य, स्पिरिचुअल, डिवाइन सर्च लाइट, जो कि सारे विश्व को प्रकाशित करे। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव वरदान। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन जाओ और क्या करो, गुह्य अनुभव के रत्नों को स्वयं में भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपकी संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, आप धरती के सितारे, इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो, आप पुरुषोत्तम आत्मा है, विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। तो इतना बड़ा काम हमको करना है, बड़ा दुर्लभ कार्य है ये। अगर इस कार्य को रखा जाए तो इसके ग्राहक बहुत कम है। एक ग्रंथालय में वो जो सहायक होता है, वो प्रमुख ग्रंथालय का जो व्यक्ति है, उसको कहता है कि हमारे ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबें हैं जो लोग कभी पढ़ते ही नहीं, पाठक क्या करे, और वो बड़े कठिन टॉपिक्स पर है, विषयों पर है। तो वो जो ग्रंथालय का मुख्य होता है, प्रमुख, वो एक युक्ति रचता है जिससे दूसरे दिन सारे लोग वो किताबें पढ़ने लगते हैं। कौन सी युक्ति होगी? वो सहायक कहता है कि कुछ ऐसी किताबें हैं कठिन विषयों पर कि जो लोग उसे पढ़ते ही नहीं, ऐसी कब से रखी हुई है अलमारी में। तो वो एक ऐसा युक्ति सोचता है कि दूसरे दिन हरेक के हाथ में वो किताब होती है। सबसे पहले तो एक नई अलमारी बनाता है, एकदम कलरफुल, अट्रैक्टिव, उसमें वो सारी किताबें लिखता है, रखता है और ऊपर एक बोर्ड लगा देता है कि ये अति दुर्लभ किताब है, जो अति समझदार व्यक्ति है केवल वही इसे पढ़ पाएंगे, जो अति बुद्धिमान है उनके लिए, बाकी बुद्धुओं के लिए नहीं है। तो दूसरे दिन सभी के हाथ में वो सारी किताबें है। तो हमें भी सर्च लाइट बनना है। सर्च लाइट ऐसा होता है ना, यहां पर होता है, घूमता है वो, जहां प्रकाश जाएगा एकदम वो अलौकिक हो जाएगा, वो आलोकित हो जाएगा। तो हमें सात प्रकार के सर्च लाइट अपने अंदर, सात प्रकार की लाइट अपने अंदर लानी है, ताकि उससे हम सर्च लाइट बने और उससे ज्ञान, उससे संसार को प्रकाशित करें। सबसे पहली सर्च लाइट है ज्ञान की सर्च लाइट। अपने अंदर ज्ञान भरना है, कूट कूट के ज्ञान भरना है। और कैसे भरेंगे ज्ञान? चिंतन से, मनन कर करके, सोच सोच के, गहराई में जा जाके, अनुभव कर, एक एक बात का अनुभव कर करके। प्रश्न चित्त वो है जो क्यों कैसे परे है, ये कह दिया, स्लोगन पढ़ लिया, अब क्या, कैसे, क्यों क्या, कौन से प्रश्न है जीवन के जिसमें क्यों क्या उठते हैं, लोग क्या कह देते हैं, करते हैं, तब क्यों क्या उठता है, और भगवान कह रहा है क्यों क्या तुमको उठाना ही नहीं है। क्यों क्या आ रहा है अर्थात प्रश्न चित्त, अर्थात दुखी, और जो फुल स्टॉप लगा दे रहा है वो पूर्ण विराम, ये ज्ञान की पॉइंट है। पर ये ज्ञान की पॉइंट को अब बल बनाना है, शक्ति बन जाए, पावर बन जाए ये पॉइंट। इसके लिए उसका अनुभव करना। तो हमें यदि विश्व के लिए सर्च लाइट बनना है तो स्वयं अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को भरना होगा, और ज्ञान जैसा कोई प्रकाश नहीं है। अभी हमारी जो भी अवस्था है वो हमारे ज्ञान के समझ की वजह से है। अगर 10 साल पहले हम अपने आप को देखते हैं, अगर सेम परिस्थिति वहां आती तो शायद जितनी हमारी समझ नहीं थी, अभी वो आई, अभी समझ थोड़ी ज्यादा है। शायद यही परिस्थिति और बाद में आए तो समझ उससे और ज्यादा होगी, अर्थात हम समझ में आगे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, हर दिन हर समय। तो अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते जाना है। हम देखते हैं दो परिस्थितियां दो व्यक्ति के पास आई, एक व्यक्ति प्रभावित हो गया, दुखी हो गया, हलचल में आ गया, दूसरा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ, जरा भी हलचल में नहीं आया। क्यों नहीं? उसी के ऊपर आई है, दोनों के ऊपर समान परिस्थिति आई है। दो व्यक्ति, दोनों के ऊपर समान परिस्थिति, एक एकदम गिर गया, उदास हो गया, दुखी हो गया, भाग गया रन छोड़कर, दूसरा दूसरे के लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम छोटी सी बात थी वो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी समझ और है, हायर अंडरस्टैंडिंग है उसके पास। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वी डू नॉट मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, वी मूव फ्रॉम लेसर अंडरस्टैंडिंग टू हायर अंडरस्टैंडिंग, वी मूव फ्रॉम लेसर लाइट टू हायर लाइट। हम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, हम कम समझ से ज्यादा समझ की ओर, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर जाते हैं। कोई कहे कि तुम अज्ञान में हो, आज की मुरली में 2 बार है ऐसी बात, किसी को कहो कि तुम पति तो बिगड़ते हो, और किसी को कहो क्या नरकवासी हो, तो एकदम बिगड़ जाएंगे, पर कहेंगे जरूर किसी की मृत्यु होने के बाद क्या ये अभी स्वर्गवासी, पर ये नहीं मानेंगे कि हम नरकवासी है, बिगड़ पड़ते हैं। किसी को कहो तुम पतित आ गए यहां पर, फिर से बिगड़ते हैं। ज्ञान प्रकाश है, मन के अंधकारमय कोनों को प्रकाशित करना है ज्ञान से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है अवचेतन मन में अभी भी ऐसे कई कोने हैं जहां पर हम पहुंचे ही नहीं, वहां एक भावना रखी हुई है घृणा और नफरत की। हम सारा दिन पर इधर घूमते रहते हैं, मैं प्रेम स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पर इधर किसी कोने में, किसी खाने में वो घृणा पड़ी हुई है, पता नहीं कब जमा की थी स्टोर हाउस में, और वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। पहुंचेंगे तब जब जिस व्यक्ति के लिए घृणा है वो उधर से आ जाए, और जो नया व्यक्ति आता है टॉर्च लेकर आता है, अच्छा है आ गया वो, जिससे ये कोना प्रकाशित होता है। नहीं तो हम तो यही मैट्रिक लेके घूमते रहते हैं, यहां तक पहुंचते कहां है। इसके लिए धन्यवाद उसका भी जो प्रकट हो गया उचित समय में, हमें तो पता चला उसके आने से कि मेरे में ये बात है, मुझ में भी अहंकार है, ये उसके आने से पता चला। नहीं तो हम समझते थे हम बहुत नम्रता के सागर है, पर उसने बात ही ऐसी कह दी कि गई नम्रता। सबसे पहला सर्च लाइट, सबसे पहला लाइट जो लाना है अपने अंदर वो है ज्ञान का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज की मुरली के साथ चिंतन, और क्या करना पड़ेगा? पढ़ना, और क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट करके रखनी है कुछ पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके रखनी है रात को सोते समय, ताकि दूसरे दिन उसको पढ़ ले और फिर मुरली सुने और ज्यादा पक्का होते जाए। कुछ पॉइंट वैसी की वैसी हमको याद हो जाए, जैसी है वैसी की वैसी। जैसे आज की मुरली में तुम्हें अच्छे अच्छे गीत सुनने चाहिए, क्या हो जाएगा? उससे रोमांच खड़े हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? नशा, और क्या हो जाएगा? खुशी मिलेगी, नशा नहीं, एकदम नशा चढ़ जाएगा बाबा ने कहा, एकदम खाली नशा नहीं, एकदम नशा चढ़ जाएगा, खुशी रोमांच खड़े हो जाएंगे, पर वो खुशी स्थायी भी रहे, ये भी कहा है आगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, स्थायी भी रहे। तो मुरलियों में ऐसे वाक्य आते हैं, उनको क्या करना है? वहां से दबोच के निकालने हैं, ऐसे अलग से निकालने हैं, फिर उनको देखना है, जैसे कोयला है उसमें से कुछ निकाला, हीरा, और फिर उसको देखा, फिर तराशा परखा अच्छे से जाना और फिर रखना इधर अंदर ज्ञान, वो एक पॉइंट परिस्थिति में काम आ जाएगी। छोटी सी ज्ञान की पॉइंट काम आ जाती है परिस्थिति में, जब व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया अचानक से और उस दुख के समय उसने केवल इतना वाक्य याद कर लिया, स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात सुख दुख में समान, बस स्टेबल हो जाएगा थोड़ा, मान अपमान सब कुछ समान। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सर्च लाइट, इस अज्ञान के सर्च लाइट से संसार से अज्ञान का पर्दा उठाना है, अपनी संपूर्णता की रोशनी से, मुरली है आज की, अपनी संपूर्णता की रोशनी से, अपने संपूर्ण ज्ञान की रोशनी से। दूसरा प्रकाश है, दूसरा सर्च लाइट है योग या तप का सर्च लाइट। बिना योग बल के विकारों को जीता नहीं जा सकता, केवल ज्ञान की शक्ति से। ज्ञान कोई कितना भी जान ले, समझ ले, कितना भी महारथी बहादुर हो जाए, कल की मुरली में था तुम बलवान कैसे बनते हो, बाप के संग से। यह सत्संग तुमको क्या करता है, बलवान बनाता है। और संग अर्थात संग की परिभाषा है कल की मुरली में, याद, संग अर्थात याद, तुम याद में रहते हो अर्थात उसके संग में रहते हो, यही तुमको बलवान बनाएगा। दूसरा सर्च लाइट जो हमें बनना है वो है योग, योग की सर्च लाइट अपने अंदर लानी है, योग की पावर अपने अंदर भरनी है, उसी से ही विकारों को जीत पाएंगे। केवल ज्ञान से विकारों को नहीं जीता जा सकता, विकारों को जीतने के लिए योग अर्थात शरीर से ऊपर उठना है, क्योंकि सारे विकारों का संबंध शरीर से है। समझ तो आ गई, पर अभी नेक्स्ट स्टेप है ऊपर उठना। एक विश्वविद्यालय में, हिंदी का विश्वविद्यालय है जहां पर छात्र है जो कि हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी सभी की इच्छा है कि मैं बड़ा से बड़ा लेखक बन जाऊं हिंदी का, कोई साहित्यकार बन जाऊं, कोई उपन्यासकार बन जाऊं, कोई कवि बन जाऊं, हिंदी के जो महारथी है लेखक उनकी श्रेणी में मैं चला जाऊं। तो हिंदी साहित्य का अध्ययन होता है वहां पर। वहां एक दिन एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हिंदी का लेखक आता है और उन सब छात्रों से पूछता है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है साहित्यिक महत्वाकांक्षा। लिटरेचर की डिजायर है कि जो लेखक बनना चाहते हैं, सब हाथ खड़ा करते हम। तो वो लेखक उनको कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ आप अपने घर और लिखना चालू करो। व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम, तुरंत काम करना चालू करो। ये विद्यालय भी कभी कभी बाधा तो नहीं बन जाए तुम्हारे इसमें, जाओ अभी अभी और लिखना चालू कर दो, अभी के अभी करो तो बन पाओगे। लेखन कला कोई सिखाता नहीं है, स्वस्फूर्णा से जागती है। योग क्या करेंगे, योग के लिए, योग का सर्च लाइट बनने के लिए, अरविंद भाई योग का सर्च लाइट बनने के लिए क्या करेंगे, योग को बढ़ाएंगे कैसे, धीरे धीरे योग के समय को बढ़ाना पड़ेगा, अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, नुमा शाम के योग पर ध्यान और रात्रि से सोने से पहले भी योग, ये तीन चीज, और सारे दिन भर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का योग चलते फिरते, तो योग का सर्च लाइट बनेंगे। तीसरा है वैराग्य, अंदर वैराग्य भरना है। कैसे आएगा वैराग्य, संसार की नश्वरता का चिंतन कर करके, संसार के झूठ का चिंतन कर करके, यहां सब झूठ ही झूठ है, आज की मुरली में भी है वो है सचखंड, वहां सच सब बोलते। ये झूठ कण, यहां सच कोई बोलने वाला है ही, ये सब झूठा ही झूठा है संसार। देखना है इस संसार में झूठ क्या क्या है। ये जो लोग स्तुति करते हैं वो भी झूठी है। किसी किसी की आदत होती है, ये भी एक नया पॉइंट है, किसी किसी की आदत ही है स्तुति करने की, खाली स्तुति करते बैठते हैं। स्तुति की प्रशंसा करना अच्छी बात है, पर वो उनका बिजनेस ही है स्तुति करना, जो भी आएगा उसकी स्तुति करते रहते। जो द्वापर से वो होते हैं ना राजा के इर्द गिर्द चाटुकार, क्या बोलते हैं उसको, भाट, उनका काम ही है, बिजनेस ही है। जो आपके लिए महिमा गई, हम सोचेंगे कितना मेरे लिए कहा, आप हटेंगे दूसरा आएगा उसके लिए भी वही सब कुछ कहा, तीसरा आया उसके लिए भी सब कुछ वही कहा, व्यवसाय है जैसे ये। ये भी एक, इसलिए उस स्तुति से प्रभावित रहना है, क्योंकि ये स्तुति करने वालों की एक टोली का वो सदस्य है तो इसकी स्तुति से क्या प्रभावित होना है, क्योंकि उनका बिजनेस जैसा है, वो हर एक की करते रहते। इन सब से वैराग्य, नहीं तो स्तुति हिलाती है, डोलती डुलाती है, खींचती है अपनी तरफ, आकर्षित। जो व्यक्ति स्तुति करता है उसमें मोह हो जाता है, वो अच्छा लगने लगता है, और जो निंदा करता है उससे दूर दूर भागते हैं, वो दिखा तो उधर से इधर से जाते हैं। और जो स्तुति करने वाला अगर वहां से खड़ा है और हमको यहां से जाना है तो वहां से जाएंगे, वो कहेंगे इधर आओ इधर आओ उसके सामने जाके खड़े होते हैं, उससे और थोड़े से कॉन्टेक्ट बढ़ाते हैं ताकि वो और थोड़ी महिमा गाए। योगी जी कहां थे, होता होगा फायदा, पर वो इधर मोह उत्पन्न कर रहा है ना। योगी अर्थात अप्रभावित, कोई भी उसे प्रभावित ना कर सके, कोई भी किसी भी बात से। तो वैराग क्या करना है, वैराग का सर्च लाइट बनना है। अगर हम में ही वैराग नहीं है तो हम दूसरों को वैराग कभी भी नहीं सिखा सकते। जो हम में होगा अंदर, वही उसी का प्रभाव पड़ेगा। अगर हम में ही वो चीज नहीं है, किसी को कितना भी समझाओ अमृत वेला ऐसा करो वैसा करो याऊं करो त्याऊं करो, पर हम खुद ही नहीं कर रहे या खुद ही शक्तिशाली नहीं हो रहा है, तो दूसरों को सिखाने की समझाने की हिम्मत भी नहीं रहेगी। वैराग का सर्च लाइट। चौथा, त्याग का सर्च लाइट। वो हर चीज जो भगवान और मेरे बीच में है, विष की तरह उसका त्यज दो, उसको त्याग दो। वो चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति हो सकता है, कोई संबंध हो सकता है, कोई लगाव कोई जुड़ाव कुछ भी हो सकता है, या कोई डिस्टर्बेंस, पर वो मेरे और भगवान के बीच आ रहा है, अर्थात व्यवधान बाधा है, उसको क्या कर दो, त्याग दो, फेंक दो, जला दो, और राख को समंदर में डाल दो। त्याग। गीता 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 बोलते रहो, क्या आता है, गीता 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 बोलते, अर्थात क्या आता आता है, त्याग। कंटिन्यूअस गीता गीता बोलते रहो, गीता 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 त्याग। तो गीता का सार क्या है, त्याग। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, देह के सारे धर्म को छोड़ ना? त्याग, त्याग के सर्च लाइट। चौथा, पांचवा, पवित्रता, प्यूरिटी का सर्च लाइट बनना है। जितनी हमारे अंदर प्यूरिटी होगी उतनी ही प्यूरिटी बाहर झलकेगी। अंदर ही प्यूरिटी नहीं है तो दूसरों को प्योर बनने की शिक्षा देने की हिम्मत भी नहीं होगी, खुद ही अंदर से धक्के खा रहे हैं, तो कैसे दूसरों को सिखा सकेंगे समझा सकेंगे। प्यूरिटी का सर्च लाइट बनना अर्थात अथाह प्यूरिटी अंदर भरना है, देह का संकल्प मात्र भी चिंतन ना हो। आज की मुरली में क्या है, देह बिल्कुल भी याद ना आए तुमको, ध्यान रहे नहीं देह का, ये है यथार्थ याद। यथार्थ याद अर्थात जिसमें केवल अपने आप को आत्मा समझना है, देह जरा भी याद ना है, देह भी जरा भी खींचे ना, देह की जरा भी हलचल ना हो। याद में सबसे बड़ी बाधा देह ही है, पर देह में रहते ही याद करना है, इसी देह के अंदर बैठकर बड़ा पुरुषार्थ है। देह है पर मैं हूं नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये यथार्थ याद है। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात आत्मा देह को टच ना करे, स्वयं के आत्मा इस शरीर में बैठे हुए इस शरीर को ही टच ना करे, आत्मा के हाथ शरीर के हाथ को टच ना करे, आत्मा के पैर इस शरीर के पैर को टच ना करे, आत्मा की आंखें इस शरीर की आंखों को ना देखे। आत्मा इतनी निर्लिप्त इस शरीर में रहते हुए रहे, जब ऐसी प्यूरिटी की स्टेज है तो याद बहुत सहज है, सहज है। अगर नहीं है तो शरीर खींचते रहता है नीचे। तो कौन सा सर्च लाइट बनना है? प्यूरिटी का सर्च लाइट। उसके बाद अगला लगन, लगन में मगन, लगन का सर्च लाइट। लगन अर्थात धुन, एक ही लगन लग गई है बस, उसके सिवा कुछ सोचता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, बस वही 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 बुद्धि में खूंजते रहता है। जब तक ऐसी लगन नहीं लगती कोई भी महान उपलब्धि नहीं होती है। जैसे कोई विद्यार्थी होता है, एग्जाम देता है तो कैसी लगन लग जाती है उसको, आईएएस की जो पढ़ाई करते हैं, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, निकलते नहीं है कमरे से बाहर। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की जो पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, एक कमरे में बस वहीं रहते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं, कुछ दूसरा उनको सूझता ही नहीं है, दिन रात लगे रहते हैं, तब कहीं जाके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो लगन लग जाए, क्या करे उसके लिए जिसके वजह से लगन लग जाए, क्या करे कि जिससे लगन लग जाए एकदम तीव्र प्रखर, चोखा पुरुषार्थ। चोखा चोखा होता है ना, खरा रियल खालिस। क्या किया जाए जिससे पुरुषार्थ ऐसा हो जाए, ये लगन बढ़ जाए उसके लिए क्या करे वो बताओ। एक कोई बात पावरफुल जिससे बहुत लगन बढ़ जाए। कमलेश भाई कोई एक बात बता दो जिससे लगन बढ़ जाए, अभी जितनी लगन है उससे डबल हो जाए एकदम। हाँ चिंतन कर लिया, उनली चिंतन कर लिया, लगन बढ़ जाए। अगर हमें आज अभी यहां एक ज्योतिषी आ जाए और हाथ देखे और कहे कि दो दिन के बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पेपर आने वाला है जो आज तक नहीं आया है, जिससे तुम्हारी नींव हिल जाएगी, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पेपर आने वाला है जो अभी तक कभी नहीं आया, बहुत भयंकर भारी संकट मंडरा रहा है दो दिन के बाद, पर हां अगर तुम जिस पे तुम्हारा विश्वास है, तुम जिसको भगवान मानते हो, अगर तुम उसकी याद में रहोगे तो वो संकट दूर हो जाएगा। कोई भी ऐसा एक बाहर का ज्योतिषी आके हाथ देकर बता दिया, अब क्या करोगे? दो दिन पिकनिक वगैरह जाएंगे, छुट्टी वगैरह करके कुछ क्या करेंगे? ऐसा संकट है ये एकदम भयंकर, जो मतलब आज तक आया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, सबसे हिमालयन संकट, महाकाय संकट आने वाला है, स्वजनों की मृत्यु या किसी की एकदम से बीमारी, या तो देवाला, सारा पैसा सारा घर गया खत्म, बैंक में सारे बिजनेस पार्टनर धोखा देके भाग गया, कुछ भी हाथ में नहीं रहे, ऐसी इससे भी बड़ी कोई परिस्थिति, या पवित्रता पर कलंक, ब्लेम, कुछ भी, पुलिस केस, कोर्ट केस, क्या करेंगे दो दिन अब बताओ। उसने और वो ज्योतिषी ऐसा है कि उसने आज तक जो कहा है हमेशा हुआ है और उसी ने आके बता दिया है कि ये ऐसा दिख रहा है तुम्हारा, और वो कहता है कि पर इससे तुम उबर जाओगे यदि तुम जिसको मानते हो एकदम उस पर तुम्हारा विश्वास है तो इससे हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या करोगे दो दिन? व्यर्थ छोड़ेंगे नहीं, छूट जाएगा। कुछ हमको करना ही नहीं है, अपने आप ही होगा सारा। धुन 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 लग जाएगी कि अभी तो ऐसा संकट आने वाला है, एक पल भी उसी में मगन हो जाएंगे। तो समय, अपने आप को समय देना है कि ये बस इतना ही समय मेरे पास है, ज्यादा नहीं है। अब इतना अगर नहीं कर पाया मैं, अपने आप को जैसे एक हफ्ता दे देना, एक दिन दे देना, शाम तक मुझे वो सब करना है जो आज तक नहीं किया ब्राह्मण जीवन में। ऐसी प्यूरिटी आज धारण करनी है जो आज तक 10 साल में धारण नहीं की। आज 6 साल 6 बजे तक, 6 बजे से 6 बजे तक की प्यूरिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि पिछले 6 साल में जो हुआ नहीं वो 6 घंटे 12 घंटे में कर दूं। जब टाइम लिमिट, टाइम की मियाद दी जाती है तो ही काम होता है। किसी को कहो ये कंस्ट्रक्शन कर लेना तुम, कहता ठीक है करता हूं। उसको कहो बस 2 दिन में होना चाहिए। सुखधाम के लिए दादी ने क्या कहा था, डेट दे दी थी, ये तारीख तक हो जाए। लग गए सब क्योंकि दादी ने कहा है और करना ही है। तो डेट देनी होती है अपने आप को, टारगेट देना होता है तो ही टारगेट्स। कंपनी में, बड़े बड़े कंपनियों में क्या करता है, ऐसे करते हैं ना, टारगेट्स देते हैं हर एक को, अपने अपने टारगेट पूरे करने। नहीं तो कहा कि देखो भाई तुम मुझसे होता है उतना करो, तो होगा ही नहीं कभी। लास्ट प्रेम, प्रभु प्रेम, प्रभु प्रेम का सर्च लाइट बनना है। अपने अंदर क्या भरना है, कूट कूट के क्या भरना है, प्रभु प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। मनुष्य से प्यार करके देख लिया क्या मिला? क्या मिला? आंसू, धोखा, दुख, दर्द, क्या मिला? निराशा। मनुष्य से बहुत प्यार किया, यही सब मिला। टेंशन टेंशन टेंशन, डर, नाराज ना हो जाए, यही तो रहता है। हमेशा ये करना पड़ता है, उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, भाई तुमने ये समझा ना, ऐसा नहीं है, ऐसा है। सारा आधा जीवन तो पतियों का और पत्नियों का इसमें ही चला जाता है, एक दूसरों को जस्टिफिकेशन देने में कि तुमने ये जो देखा ना वैसा है नहीं, ये तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो मानने को तैयार नहीं, ना ये मानने को तैयार। आधा जीवन तो क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन में ही चला जाता है। लौकिक देहधारियों के संबंध में ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि वो समझता है तुमने ऐसा किया, वो कहता है ऐसे नहीं, तुमने जो देखा वो ऐसा नहीं है। पर वो मानता है कि सामने वाला मानने को तैयार नहीं। तो प्रभु प्रेम ही ऐसा है जहां भगवान को आपको कहना पड़ता है, बाबा आज मैं सोया ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आपसे प्यार कम हो गया है। बाबा खुद ही कहेगा, बच्चा तुम्हारे तो बहुत ज्यादा प्यार है, भले तुम सोए पर तुम्हारा प्यार कम नहीं है। और हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है बाबा को कि बाबा आपने अगर समझा होगा कि आज मैं अमृत वेला सोया तो मेरा आपसे प्यार कम है, प्लीज ऐसा नहीं है। खत लिखने पड़ते हैं, मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। और उधर लौकिक में पूरा दिन भर भी मैसेजेस करो तो भी सामने वाला मानता है क्या? वो कहता है तुम हो ही ऐसे। वो इस पे बात पहले भी सुनाया था ना, वो पत्नी है, इतनी शक करती है अपने पति पर कि कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ वो सुराग ढूंढते रहती है, इसका कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। तो ढूंढ ही लेती है, उसको कोई ना कोई बाल मिल गया, अच्छा ये बाल किसका है। और जिस दिन उसको कुछ नहीं मिलता वो कहती है अच्छा नाउ यू हैव स्टार्टेड मूविंग विद बाल्ड वुमन। प्रभु प्रेम तो ये साथ है। सबसे पहला बताया ज्ञान का सर्च लाइट, अपने अंदर ज्ञान भरना है, कूट कूट के ज्ञान भरना है, मुरलियों से ज्ञान भरना है। मुरलियों को जितना टाइम अभी हम दे रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं है, ज्यादा समय देना होगा। लौकिक जॉब कर रहे हैं 8 घंटा 2 घंटा ट्रैवलिंग, मुरली कब पढ़ोगे? पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, चिंतन कब करोगे? समय चाहिए अच्छे पुरुषार्थ के लिए। अपने लोभ को, ग्रीड को नीड नहीं कहना है, वो लोभ है जिसके वजह से 10-10 घंटा काम कर रहे हैं, ये समय उसके लिए नहीं है, समय बहुत कम है। तो सबसे पहला ज्ञान भरना है, दूसरा योग का टाइम बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ानी है, तीसरा वैराग्य लाना है। कैसे लाएंगे वैराग्य? देखकर, वास्तविकता देखकर। जितना देखेंगे संसार की वास्तविकता को, वैराग आएगा। हाँ, देखते रहना। रावण की प्लानिंग, कैसी नई नई बीमारियां आती है, खलास, कहां है मनुष्य का पावर, कहां है साइंस, सब गया। और तो बहुत आना है, तुम्हारे सामने दुखों के पहाड़ गिरने हैं। अभी के तुम्हारे दुख तो बिल्कुल चुटपुट, चिल्लर, लिंबू टिंबू है, बड़े बड़े दुख तो अभी आने बाकी है, रियल, ये तो रियल सेल है, छोटी छोटी, बड़े दुख तो अभी आएंगे, फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे सतयुग में। अगला त्याग, वो हर चीज को छोड़ देना है जो हमें डिस्टर्ब करती है। अगला पवित्रता, अपनी प्यूरिटी को क्या करना है, अभी 6 बजे से 6 बजे तक की प्यूरिटी बढ़ा दो। कितनी बढ़ा देंगे? जो 6 साल में नहीं रही, इतनी सारी प्यूरिटी बढ़ा देना है। अगला लगन, धन धन धुन धुन धुन, तात लग जाए तुम्हें, लगन लग जाए तुमको, ओना हो जाए तुमको, मुरलियों में आता है ना ये सारे शब्द, ओना, तात, लगन, धुन, फिक्रात हो तुमको, फिकर हो तुमको, तो तात लग जाए। अगला सातवां प्रेम, तो प्रभु प्रेम में डूब जाना है। कैसे डूबोगे? एक तो योग से, और दूसरा संसार के नश्वर प्रेम का चिंतन करना है, क्या मिला। सारा जीवन एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन में चला गया, हाथ में मिला कुछ नहीं, फिर भी वो व्यक्ति कन्विंस हुआ क्या? नहीं। पति पत्नी को पूछा जाए, क्या तुमने अपने पति को समझाया 40 साल साथ में रहे? नो, उत्तर है नो। अच्छा, ओम शांति।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे
पीड़ पराई
जाने रे, वैष्णव जन तो
उपकार करे तो ये मन अभिमान नानी रे,
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे
पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मा सहुने वंदे
निंदा न करे केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे,
वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे।
दृष्टि ने कृष्ण त्यागी
परस्त्री जेने
सत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे वैष्णव जन तो